गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा के स्वरूप श्री श्री प्रेमपुरी जी महाराज, पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा और आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। पुनश्च छठे अध्याय के पहले श्लोक का पाठ करेंगे। ओम श्री भगवान वाच, ओम श्री भगवान अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। हरि ओम। देखिए, जगत एक अर्थशास्त्र है, पूरा लेन देन से भरा हुआ है। हम छोटे थे, राजस्थान में रहते थे, ओ दही बेचने वाले आती थे, दी ले लो रे, एक कटोरी भर के उसको जुआर दे दी जाए तो सामने वो एक कटोरी दही देती थी। अगर हमारी अपनी बगीचा में मूली लगी है तो मूली है वो 10-20 किलो कोई उखाड़ के ले जाए तो सामने वो 10-20 किलो गाजर दे देता था। ये लेन देन से भरा हुआ ये पूरा समाज है। अभी हम कहते हैं कि हम कुछ त्याग करें। कृष्ण कहते हैं कि जो इच्छाओं को त्याग करता है वह सन्यासी है। अभी जो सन्यासी है उनको पूछो, मुझे ही पूछो भाई, दूसरे को कहां ढूंढने जाओगे? आज इतवार है, वो मंडलेश्वर नहीं आएंगे, तो मुझे ही पूछो, महाराज जी आप क्यों सन्यास लिए? अरे मेरे पिता सन्यास के माफिक थे, मेरे दादा सन्यास लिए थे, हमारे ताऊ सन्यास लिए थे, हमारी परंपरा में नरसिंह मेहता हुए थे तो उसी परंपरा में आया तो फिर सन्यास ले लिया। कोई वजह तो होगी कि नहीं है? पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े, देश में पढ़े, विदेश में पढ़े, फिर क्यों? क्या शादीवादी का चक्कर था? लड़की जो पसंद की थी नहीं मिली, किसको शादी कर ली? ऐसा नहीं था। फिर और क्या था? कुछ नहीं था। कोई तो मतलब होगा ना? अरे भाई, आत्मा की शांति के लिए, आत्मा की अनुभूति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ये तीन तो बात सीधी है। आत्मा की शांति चाहिए, आत्मा की अनुभूति चाहिए, ईश्वर का दर्शन चाहिए, अंतरात्मा का आनंद चाहिए, ईश्वर की अहेतुक की कृपा चाहिए। तो ये इच्छा हुई कि नहीं हुई? तो अपने इच्छाओं को छोड़ा किसके लिए? इच्छा की प्राप्ति के लिए। इच्छा की प्राप्ति के लिए इच्छाओं को छोड़ा तो ये क्या छूटा भाई? तो कुछ भी छूटा ही नहीं। आपने क्या किया? वो जुआर एक कटोरी देके दही ले लिया, तो ये इच्छा तो छूटी नहीं। फिर तो मेरी इच्छा नहीं छूटी तो क्या? कृष्ण कहते हैं कि जो इच्छा के लिए इच्छाओं को नहीं छोड़ता है, इच्छाओं के लिए इच्छा को नहीं छोड़ना, तो फिर इच्छाओं को छोड़ ही देता है, कुछ नहीं चाहिए। 7 दफे तेरी मतलब है तो तू आ, आई डोंट केयर फॉर यू, ऐसी भावना है क्या? पूछो अपने आप को। मैं कृष्ण का ध्यान नहीं करता हूं, उसको छटपट है तो मेरा ध्यान करे, ये है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर इकरार से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। फक्कड़, कैसा फक्कड़ हो? जो अनिर्वचनीय, निर्लेप नहीं है। एक महात्मा है, जंगल में रहते हैं, पेड़ों की छालों को जोड़ के एक वस्त्र पहन लेते हैं। जोड़ते कैसे हैं? केले के पेड़ का रेशा निकाल लेते हैं, वो तो डोरा हो गया। और सुई कौन सा है? बबूल का दो कांटा, एक कांटे से दूसरे कांटे में छेद करते हैं और उसमें वो केले के पेड़ का रेशा डालते हैं, घुस गया, उसी से कपड़ा सीते हैं। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म, ऐसे आत्म चिंतन में लगे हुए हैं। कोई इच्छा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई परिकल्पना नहीं है, कोई संकल्प भी नहीं है। वो आत्मस्थ हैं कि वह सुई में छेद हो जाए, बबूल के कांटे में, बबूल के कांटे से छेद कर रहे हैं। क्यों? वो केले के पेड़ का रेशा घुसाने के लिए। उस समय परमात्मा प्रकट हो गए, वरमरुही ऊपर देखा, क्या बोला भाई? अरे तुमको क्या वरदान चाहिए? अरे मूर्ख, देखता नहीं है ये इसमें नहीं जा रहा है, डाल के दे। देखिए कैसी उच्च स्थिति है, परमात्मा ठहरे तो तुम्हारे घर के। अभी मेरा मतलब क्या है? यही है, क्या इतनी उच्च स्थिति हमारी है? नहीं है तो करना पड़ेगा। पुनः पुनः क्या कहते हैं, यह श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, जो हम सुन रहे हैं 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 32 साल से, उनको जुगाली करो। जैसे गाय खा लेती है, बैठ के जुगाली करती है, बाहर निकाल के उसको चबाती रहती है। तो जो यहां सुना, दिन भर उसके चिंतन में रहो। रात में सोने के पहले सवेरे महाराज ने क्या कहा था, उसके विचार को लेकर के सो। सवेरे उठो उसी विचार को लेकर के। आपको जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है, आप जहां रहो वहां पर एक आनंद की अनुभूति करेंगे, आत्मस्थ हो जाएंगे। फिर कृष्ण आगे कहते हैं, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिन्तयेत्। मन जब एक बार आत्मा में लग गया फिर कोई विचार नहीं रहेगा। जब व्यवहार में रहते हैं तो नमक है, हींग है, जीरा सब होता है, किंतु व्यवहार जगत के लिए है, अपने लिए नहीं है। श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव है, वो उनको भगवती काली का दर्शन हो गया, प्रत्यक्ष जगदम्बा का दर्शन करने के बाद में पहली बार ससुराल गए। अभी क्या है ससुराल है? ओ जयराम बाटी, छोटा सा इतना गांव, 200 साल के पहले रात में पहुंचे तो उनकी सासू ने अरहर की दाल उबाल दी, उसमें थोड़ा नमक और थोड़ा हल्दी डाल दिया। वो खाने बैठे तो बोले, अरे की व्यापार, मतलब क्या है? मैं दामाद हूं, 5 फोड़ों मोसला ना थाकले खाबो की? इसमें हींग नहीं है, इसमें जीरा नहीं है, इसमें राई नहीं है, हरा मिर्च की लाल मिर्च नहीं है, अदरक नहीं है, अरे मीठा नीम पत्ता नहीं है, थोड़ा टमाटर नहीं डाला है, थोड़ा गुड़ नहीं डाला है, ये क्या उबला उबला खाना हा? मैं दामाद हूं, इसको ऐसा खाना खिलाती हो? तो हृदय उनका भांजा था, वो एक दफे उनसे पूछा था, आपने पहली बार ससुराल गए अपनी सास को इतना टकरा करके मार के रख दिया, ये क्या उचित है? जब मरने लगे महासमाधि प्रयाण, तब स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जिनका नाम नरेंद्रनाथ था, आमी खिचड़ी खावो, मैं अभी मोगलाई खिचड़ी खाऊंगा। तो पैसे तो थे नहीं, शरद महाराज, शरद शशि लाटू तारक, ये तमाम लड़के लड़के थे, इधर से उधर से पैसा बटोर करके दाल चावल, मोगलाई खिचड़ी क्या होता है, उसमें बड़ा बड़ा आलू का टुकड़ा और बड़ा बड़ा फूल गोभी का टुकड़ा, बहुत घी अदरक कद्दू खस करके हरी मिर्ची बनाया। और बोलते हैं, अमी तुम्हारे मुख दिए खाबो, अभी मैं आप सबके मुख से खाऊंगा। उनको तो कैंसर था, गले में पानी भी नहीं जाता था। वो स्वामी विवेकानंद जी झल्ला गए, जब खाना ही नहीं था तो इतना सिरदर्द क्यों करवाया? तो बोले, बाबा तुम्हारा मन और मेरा मन अलग है क्या? एक समष्टि मन है, तुम खाए तो मुझे तृप्ति हो जाएगी, फिर स्वामी विवेकानंद जी महाराज फिर झिल्लाए, अगर आप वस्तुतः जगदम्बा 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 करते हो तो जगदम्बा को बोल नहीं सकते कि ये मेरा कैंसर ठीक करो? वो क्या बोले? अरे मच्छर मारने के लिए क्या एटम बम फोड़ना, मेरे गले की जो तकलीफ है उसके लिए जगदम्बा को मैं बोलूं ठीक करो? अरे अभी तो वो ठीक कर देगी, किंतु मेरे कर्म का भोग तो मुझे कहीं ना कहीं भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में जो हम कर रहे हैं वो तो अनुचित नहीं है। तो जो कर्म है उसके पीछे इच्छा लगी हुई, कृष्ण कहते हैं इच्छाओं की भी इच्छा नहीं, भगवान की भी इच्छा नहीं, गुरु कृपा की भी इच्छा नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम कर्म करते चले जाओ। इच्छा को क्या करना है? अरे जिसने आपको शरीर दिया है, जिसने आपको, कलम ने क्या कहा, बच्चे के पैदा होने के पहले माता के स्तन में दूध नहीं होता है, बच्चे के उत्पन्न होने के साथ में दूध आता है, जिसने आपके लिए दूध बनाया। मुझे पता नहीं है कि आपने बया का घोंसला देखा है कि नहीं, वो तो बया का जो घोंसला होता है दो तरह का होता है, एक गोल होता है और नीचे एक लंबा भी होता है। तो एक बया छोटी चिड़िया, अरे वो गोंद कहां से लाई, वो चूना कहां से लाई, वो सीमेंट कहां से लाई, वो ग्लू कहां, किस तरह का इतना सुंदर घास का गोल बना देती है। फिर वो मर्द बया वो एक स्त्री बया को ढूंढ लेती है अपनी सहेली, उसको बार बार दिखाती है, वो तीन दफे चार दफे देख लेती है, पसंद आ गया दोनों मिलकर के फिर बाकी पूरा कर लेते हैं, पसंद नहीं आया वो चिड़िया उड़ जाएगी, फिर ये मर्द भी उसको छोड़ देगा नया बनाएगा। क्या आश्चर्य है, ऊपर से जाते ही नीचे निकलते हैं, अंदर बैठने की भी जगह नहीं है, देयर इज नो सपोर्ट ओवर इट ऑल, पर उसमें थोड़ा चूना लगाते हैं, उसमें अंडे रखते हैं, उसमें इनके दो बच्चे हो जाते हैं। ये सृष्टि किसने बनाई? कल्पना के बाहर की बात है। एक चिड़िया जो है वो किसी बड़ के फल को खाती है, वो पीपल के छोटे छोटे फलों को खाती है, खाने के समय में बीज को बिना तोड़े चबाए निगल जाती है, वही चिड़िया आसमान में उड़ने के समय में अपना बीज ऊपर से गिरा देती है, वो कोई दीवार में लगता है, कोई मस्जिद में, कोई मंदिर में, और देखो वहां उसके अंदर से एक पीपल पैदा हो जाता है, एक बड़ पैदा हो जाता है। वहां धूप तो है, पानी नहीं है, मिट्टी नहीं है, खाद नहीं है, किंतु उस पत्थर की चट्टान में एक पीपल पैदा हो जाता है, और ध्यान ना दो तो एक तीन चार साल में उस दीवार को तोड़ के रख देता है। एक बीच में इतनी क्षमता है, तो हम क्यों अपने आप को टटोलते नहीं है? जो अपने जीवन में सब समय देख रहे हैं कि वो गुरुवाणी कहती है करत करावत आपे आप, वो ईश्वर ही कर रहा है, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, कल कहा कि स्वयं ही कुछ कर रहा है। हमारी अवस्था कैसी है? आपके बंबई के घरों में चिपक ली आती है कि नहीं? हाँ चिपकली, वो चिपकली है दीवार में चलती है, नहीं खिसकोली नहीं, गरोली गरोली, वो चिपकली है वो दीवार में चिपक जाती है। क्या सोचती है? अगर मैं यहां से हट जाऊंगी तो मकान छत गिर जाएगा। अरे मेरी प्यारी, तुम छत से तुम चिपके हुए बेटे, तुमसे छत नहीं टिकी है। नरसिंह मेहता ने क्या कहा? शकट नो भार जिम स्वागताने। एक बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, देहात में गाड़ी तो पहिए से चलती है, गाड़ी को खींचने वाले बैल हैं, उनके नीचे जो स्वान चलता है वो सोचता है बैलगाड़ी को मैं चलाता हूं, कौन चलाता है मेरे नारायण? हम क्यों अपने अहंकार को, हम क्यों इतना बटोर रहे हैं, हम क्यों इतना पागल होए जा रहे हैं? अपने खातिर महल बनाया, आप ही जाकर जंगल सोया, इस तन धन की कौन बढ़ाई। बटोरते चले जा रहे हैं, तो ये बटोरना नहीं। वो तो सन्यासी क्या कहा? उन्होंने कहा कि सन्यासी कौन है भाई? जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं हो, कोई इच्छा नहीं हो। हमारे मंत्र होते सन्यास लेते हैं तो हाथ ऊपर खड़ा करके बोल देते कि इस पृथ्वी से मेरा कोई सन्यास है, फिर ये आसमान से भी मेरा सन्यास है, पृथ्वी और आसमान के बीच में जो जगह है उससे भी मेरा सन्यास है। जब संन्यास गया, संन्यासम कोई संबंध नहीं है, विच्छेद हो गया। जनेऊ को तोड़ देते हैं गुरु, शिखा को काट देते हैं गुरु, अब तुम ब्राह्मण नहीं रहे, अब तुम्हारी जनेऊ तोड़ दी गई है, अब तुम गायत्री मंत्र का जप नहीं करोगे, तो मैं ब्राह्मण नहीं हूं। अब पहले तो उस जमाने में ऐसा था, सन्यासी आंगन में आकर के बैठ गया, दो बाल्टी पानी से लोग धोते थे, क्यों? बोले मुर्दा है, इसको क्यों यहां रखा। ये गुजरात में जैन और वैष्णव की बड़ी सत्ता थी। एक स्वामी विद्यानंद जी महाराज रहे, उन्होंने आकर के जो गीता मंदिरों की स्थापना की, उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार गुजरात में किया। 100 साल पहले तक वैष्णवों की सत्ता, जैनों की सत्ता गुजरात में रही। सन्यासी को क्या बोलते हैं? जिसने अपना श्राद्ध कर लिया है, अपने माता पिता का श्राद्ध कर लिया है, अपने दादा दादी का श्राद्ध कर लिया है, अपना आत्म तर्पण कर लिया है, तो फिर वो तो मुर्दा ही हो गया, वो जिंदा तो है नहीं। उसको न शादी में जाने का अधिकार रहेगा, न किसके घर में जाने का अधिकार। अभी तो मॉडर्न हो गए, शादी में तो महात्मा को आना ही पड़ता है, घर में तो आना ही पड़ता है, तो ये अलग बात है। किंतु सन्यासी को कोई आकांक्षा ना हो, कोई चेष्टा ना हो। वो क्या कहते हैं? यंत्रवत परिवर्तन्ति सुखानी च दुखानी च। एक जैसे कि मेरे को राउंड में बैठ गए, वो बैठने वाला ऊपर जाता है, नीचे जाता है। संसार चक्र भी ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो ट्रेन विरार से चर्चगेट गई, चर्चगेट से विरार वापस जाएगी। अरे आप बैठ तो जाओ, हाँ, किंतु कर्म कैसे करो? जिसमें कोई इच्छा नहीं हो, कोई संकल्प नहीं हो, कोई कृतवाद्य नहीं हो। देखिए बुरी वली से जो लोग बैठते हैं वो ताश खेलते कि नहीं खेलते? अब दो, मेरे को तो दो नाम याद है, 2-3-5 और एक है रमी, उसको छोड़ के मुझे और कुछ नाम पता नहीं है। तो ये कुछ भी खेल खेले उसमें एक भी पैसा नहीं लगाते, खाली वो है ग्रुप के ग्रुप लोग वहीं आ जाते हैं। 4 लोग खेलने वाले रहे, 20 लोग कैसे खड़े होकर देखने वाले, और जो खेलते हैं वो कोई जीत गया कोई हार गया तो ओ इतना जोर से चिल्ला जाते हैं। उनको एक धेले की आमद भी नहीं है, किंतु खेल खेल रहे हैं जिसमें आनंद है। खेल में कोई संकल्प नहीं है, खेल में कोई इच्छा नहीं है, खेल में कोई तृष्णा नहीं है, खेल में धेले की आमद भी नहीं है, टाइम पास ही है। किंतु फिर भी उनके मन में आनंद है। क्या कहा कल जवाहरलाल नेहरू? घोड़ा बन गया, उनके ऊपर में राजीव बैठा हुआ है, नहीं तो संजय बैठा हुआ मार रहे, तो उनको क्या आनंद है? वो लेट रहे नीचे, उनको क्या आनंद है? आनंद है, क्यों? उनके आनंद में मेरा आनंद है। आपको जो खुशी मिल रही है उसमें मुझे खुशी मिल रही है, आपकी खुशी में मेरी। तो परमात्मा के पास में जाने के लिए जो सन्यासी चेष्टावान है, तो सन्यासी कौन? क्या उसने अग्नि को छोड़ दिया? वो नहीं, वो नहीं है। तो क्या मतलब? ठीक कर्म जो है वो जीवन का स्वभाव है, और गलत कर्म है वो जीवन का स्वभाव नहीं है। क्योंकि जो जीवन है उसको हमने कहते हैं शांतोयम आत्मा, आनंदोयम आत्मा। आत्मा का स्वरूप क्या है? शांत है और आनंद है। नॉल कंडीशन आई एम ब्लिस, ब्लिस ब्लिस एब्सोल्यूट। हर हाल में अलमस्त सच्चिदानंद हूं। क्या कहा? कहा कि जिस देश में, जिस वेश में, जिस ऐश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस नाम में, जिस धाम में, जिस काम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चिदानंद 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 हूं, हर हाल में अलमस्त सच्चिदानंद हूं। कैवल्य केवल कूटस्थ आनंद हूं, अजरानंद अमरानंद अचलानंद हूं, हर हाल में अलमस्त सच्चिदानंद हूं। द टोटल कंसेप्ट ऑफ ए सरेंडर। परमात्मा ही सत्य, मैं तो हुई नहीं। अपने अस्तित्व को जानना नहीं, केवल परमात्मा ही सब कुछ है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। जा जा ठिकाणी मन जाय माजे, त्या त्या ठिकाणी तुझे पाय धूली। जहां जहां मेरा मन जाता है वहां तेरे ही चरण को मैं देखता हूं। कॉन्स्टेंट कंटिन्यूअस एब्सोल्यूट अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस, जागृत में जागृत, स्वप्न में जागृत, सुसुप्ति में जब जागृत हम हो जाते हैं तो फिर भाई देखो, अगर आपने इच्छाएं नहीं की तो क्या होगा? क्या इच्छाएं नहीं करने पर क्या होगा? गलत कर्म करना अटक जाएगा। इच्छाओं से ही गलत कर्म होता है। इच्छा कब होती है? जब मन आत्मा में नहीं रहता है तो इच्छा होती है। अभी आपको मन जब आत्मा में नहीं रहेगा तो इच्छा करता है। क्या इच्छा किया है? मुझे आज इंची लाडा खाना है। मुझे पता नहीं है, तुमने खबर ची इंची लाडा सुखे हुए इंची लाडा मैक्सिकन फूड है। अभी जिसने सुना ही नहीं, जिसने देखा ही नहीं, भाई आपने मेंची लड़ा खाया क्या? तो पुराना जोगी पूछना पड़ता है भाई। तो ये एंची लाडा क्या होता है? मैक्सिकन फूड है। वो गुजराती में दाल ढुकड़ी करते हैं ना, ऐसा ही थोड़ा विराट है। ढुकड़ी में टुकड़ा कर देते हैं, पूरा का पूरा दाल में डाल देते हैं, मैक्सिकन बोला एंची लाडा। तो जिस नाम को हम जानते ही नहीं है तो उसके दिमाग में विचार भी आएगा नहीं, किंतु एक बार हमने कुछ खा लिया है, राउंड 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 एंड स्टम्प। ये अंग्रेजी आदमी है ना, वो होता है स्वामी कैन यू, अभी मैंने गया ना उधर ताइवान में, तो बोलते स्वामी यू आर ए गुड कुक, आई वॉज टोल्ड, यस आई कैन कुक माई फूड, कैन यू मेक ए राउंड 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 एंड स्टॉप। मैंने सोचा राउंड 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 स्टॉप क्या होता है? वो जलेबी, राउंड 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 एंड स्टॉप। मैंने बोला ये मेरे बस की नहीं है बात भाई, कोई खीरा बना के दे दे तो बना भी सकता हूं, किंतु खीरा कैसे बनता है वो मेरे को पता नहीं, तेरे गांव में सब चीज। तो ये मतलब क्या है? जिस वस्तु को हम जानते नहीं तो उसका विचार मन में आएगा नहीं। जिन भोगों को भोगा है उन्हीं भोगों को पुनः भोगने की इच्छा होती है। तो ये भोग से इच्छा होती है। वो कैसे होता है? वो तो संग से होता है। तजो मन हरि विमुख न को संग, जाके संगते कुमति उपजे, पड़त भजन में भंग। अरे कौवे को आप कितना कपूर खिलाओ, वो कौवा है गोरा होगा नहीं, मीठा बोलेगा नहीं। गधे के ऊपर में कितना चंदन लगाओ, गधा फिर बाहर आकर के मिट्टी में रेंग जाएगा। मुर्दे में कितने फूल चढ़ाओ, मुर्दा आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद आपके आगमन के लिए ऐसा नहीं बोलेगा। मुर्दा मुर्दा है भाई, मरकट भूषण अंग। तो क्या करना? क्या ये असंग को छोड़ना, जो अनवांटेड है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे बहिर्गमन को छोड़ना जिससे हमारी इच्छाएं बनती है। इच्छाएं स्वयं नहीं बनती है, इच्छाओं से ही दुर्व्यवहार करने की इच्छा होती है। संग से ही हमारे मन में कपट और छल पैदा होता है। बच्चा जो है वो निर्मल है, बच्चा जो है वो निष्कपट है, बच्चा जो है वो बिल्कुल एकदम शुद्ध ब्रह्म के समान है, किंतु उसके हृदय में गलत हमने सिखाया। छोटा बच्चा 4 साल का फोन की घंटी बजने पर कहता है पापा पापा देखिए शर्मा अंकल का फोन है, तो पापा बोलते हैं बोल दे पापा घर में नहीं है। तो बच्चा क्या बोलता है? अंकल अंकल पापा बोल रहे हैं कि बोल दे घर में नहीं है। तो किसने कहा? हम ही ने कहा। बच्चे को कौन अच्छा सिखाता है? हम। गलत सिखाता है कौन? हम। तो हमारे मन की जो तालीम है अभद्रता की, अयोग्यता की, तो उसकी विषय वजह क्या है? इच्छा है। जब हम इच्छा नहीं करेंगे तो हमारे गलत कर्म अपने आप बंद हो जाएंगे। तो इच्छाओं के कारण ही जीवन गलत कर्म करने के लिए बाध्य होता है। आगे गीता में पूछा है, अर्जुन ने पूछा है कि महाराज मेरी इच्छा नहीं होते हुए भी बलात् नियोजयसि केशव, मुझसे जबरदस्ती गलत काम कौन कराता है? तो भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। देखो मेरे प्यारे, हमारे जीवन में जो सत्व रज तम ये 3 तरह के मसाले से सारी सृष्टि बनी है, जो रजोगुण हमारे भीतर है ये रजोगुण से ही हम गलत काम करते हैं। रजोगुण क्या है? जो आत्मा शुद्ध है उस शुद्ध ब्रह्म में अगर मन रहता है तो फिर कोई भी इच्छा नहीं, शुद्ध ब्रह्म से परे हो जाता है, फिर इच्छा ही शुरू होती। आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। मन को आत्मा में जोड़ करके कुछ भी चिंतन नहीं करना। अभी मेरे को बात बताओ, हमारे घर में एक शीशा होता है, आप लोग तो मुझे पता नहीं है बंबई के लोग क्या है, गुजरात का तो मेरा भरोसा, मैंने सुना हूं कि गुजराती लोग हैं वो 12 महीना बिना गर्म पानी के नहीं नहा सकते। बंबई में भी ऐसा है क्या? बिना गर्म पानी के नहीं नहा सकते, उनको पूर्व हो पश्चिम हो मई हो जून हो गर्म पानी ही चाहिए। क्या पागलपन पता नहीं। अच्छा, जब गर्म पानी से नहाते हो उसके पहले दांत साफ करते हो, दाढ़ी गिड़ी बनाते हो, तो उस समय में शीशे में आपने आपका चेहरा देखा था। गर्म पानी से नहा लिए, चाहे सावर से नहाओ चाहे बावरी से नहाओ, नहाने के बाद में वो आप अपने आप को कि तिलक भस्म लगाना है या तिलक करना है तो शीशे में दिखता नहीं। क्यों दिखता नहीं? वो भाप जो है वो शीशे में लगने से नहीं दिखती। फिर एक कपड़ा लेके उसको पोंछना पड़ता है। अभी हमारे पास में दो बात है, एक तो क्या शीशा है वो मलिन है क्या, वो दर्पण है वो मलिन है क्या? नहीं है। दर्पण में तो कोई मलिनता है ही नहीं, वो क्षण भर के लिए थोड़ी भाप आई थी, दरवाजे खोल दो बस ठंडी हवा आएगी, वो भाप अपने आप उड़ जाएगी। बहुत दिन से आपने बाथरूम को उपयोग नहीं किया, शीशे में धूल हो जाती है, तो शीशा है वो मलिन नहीं है, उसके ऊपर के धूल को थोड़ा साफ कर दो। ऐसे ही हमारा मन मलिन नहीं है, हमारी आत्मा जितनी शुद्ध मन भी उतना ही शुद्ध है। तोरा मन दर्पण कहलाए, क्या कहा? तेरा मन दर्पण कहलाए। मन तो दर्पण के समान है, भले बुरे को वो कहने वाला वही है। तो मन जो है वो अशुद्ध तत्व नहीं है, क्षण भर के संग के कारण, क्षण भर के एक हवा चलती है। कल वो राधा माता जी है, शाम को लिफ्ट में मिली, मिलकर के बोली, स्वामी जी मैं आपके पास में आ रही थी, ये लीजिए चंपा के फूल आपके लिए लेके आई हूं। अब चंपा के फूल है, बीमार रहा वो, कांदीवली में क्या बोलते हैं कैंसर में पीड़ित है। मैंने कहा देखो भाई बीमार रहे तो कल नहीं करना, आज अभी देख लेना, मैं अभी आता हूं। तो जाकर के उनको देखे गया, वहां उनके पास में वो चंपा के फूल रखे, एक दो चार मिनट में पूरे कमरे में खुशबू हो गई। जब गए वो दवाइयों की गंधवा थी, किंतु एक चंपा के फूल रख दिए, मीठा चंपा सोन चंपा, थोड़ी देर में हवा है उसमें दुर्गंध भी नहीं है, हवा में सुगंध भी नहीं है, हवा तो चलती है, अब जब गंधवे से चलेगी तो दुर्गंध हो जाएगी और फूलों के ऊपर से चलेगी तो सुगंध हो जाएगी। हवा का अपना जो अस्तित्व है वो शुद्ध ही है, मन का भी अपना अस्तित्व शुद्ध ही है। क्या कहा? नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है, उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम नहीं है, वो परम है, वो चैतन्य है, वो आनंद है, वो धन्य है, वो औदार्यम है, वो उसके लिए कोई कपट नहीं। तो क्या कहा? कहा कि भाई देखो, इच्छाओं के कारण ही जीवन है, वो गलत कार्य करने के लिए मजबूर होता है। अभी देखिए विदेश जब जाते हैं तो 6 घंटा 8 घंटा हवाई जहाज में लगता है, तो उसमें कोई कोई सिनेमा भी दिखाते हैं। आपकी इच्छा है तो देखो, इच्छा नहीं है तो एक पट्टी देते आंख में बांधने की, गांधारी बंधन, वो बांध करके सो जाओ। तो कभी कभी हम भी देख लेते हैं, अभी हमने देखा पान सिंह तोमर नाम का एक फिल्म देख लिया। वो क्या होता है, गांव का एक लड़का दौड़ने में बड़ा तेज है, इतना तेज है कि बस मत पूछो बात, आर्मी में चला गया। आर्मी में दौड़ता इतना अच्छा है, किंतु उसका जो कोच था पढ़ाने वाला बोला बेटे तू एक काम कर, ये दौड़ छोड़ दे और तू रुकावट की दौड़ में चला जा। बोले महाराज आप मेरे को इतना दिन तालीम किए, अभी रुकावट की दौड़ क्यों आ गई? बोल मैं सच बात बोल दूं, मेरी बेटी जिसको ब्याही है उस बंदे का बड़ा भाई है ना, वो भी तेरे साथ में दौड़ेगा, तू इतना अच्छा दौड़ता है कि वो हार जाएगा, वो हार जाएगा तो मेरी बेटी है, मेरा दामाद भी खेल देखने आएंगे, तो फिर मेरी किरकिरी हो जाएगी कि मैं गुरु हूं रहते रहते मेरे दामाद का भाई हार गया और तू जीत गया, तो तू इससे निकल, तू तेरे रहते रहते तो जीतने वाला नहीं, तू ऐसा कर, तू वहां जाएगा तब भी जीत लेगा। तू वहां गया तो उसको दुख हो गया। देखो कितने मतलबी लोग हैं, अपने मतलब के लिए एक अच्छे आदमी को बाहर हटा देते, एक डंक हो गया पहले, फिर वहां जब भागने लगा वो इतना अच्छा भागा है तो फिर क्या किया, अच्छा तुम जापान जाओ। जापान गए तो उसको हमेशा कैनवास के बुक जूते पहन के दौड़ने की आदत है, अब वहां गए तो उनको कील वाला जूता दौड़ने के समय दिया। बोले यार पहले प्रैक्टिस इतना दिन करते रहे कैनवास के जूतों से और अभी तुम मेरे को जूता दे रहे हो, ये वाला तो मैं नहीं कर सकता। उसने उठा के फेंक दिए तो दो नंबर आ गया, एक नंबर नहीं आया। फिर और इंटरनेशनल में चला गया, पहले से ही तालीम किया था कील वाले जूतों से, एक नंबर आ गया, उसको इतने सारे गोल्ड मेडल मिल गए। गांव के लोग क्या बोलते हैं, पहले भी भगोड़ा था अब भी भाग रहा है, घर छोड़ के भी भाग गया उधर भी भाग रहा है, तो नया काम क्या किया, अखबारों में फोटो छपी कुछ समझे नहीं। तो उनके ताऊ ने क्या किया, इसकी मां को मार दिया, इसके खेत को जला दिया, इसके पत्नी और बेटा है भाग निकले। जब इसको पता हुआ तो ये आया, पुलिस स्टेशन में गया, पुलिस स्टेशन में गया तो कहा देखो मेरे गोल्ड मेडल इतने हैं, अखबारों मेरा नाम छपा है। और पुलिस ऐसे बैठी है, छोटा गांव की छोटी पुलिस, अरे ये असली सोना है कि नकली क्या पता, और ये दौड़ने वाला तू ही है कि दूसरा क्या पता। हाँ वो पुड़िया करके मार दिया जा। वो कलेक्टर के पास गया, कलेक्टर बोलता है ये फैमिली का मामला है, आप अपने आप निपटाओ, कोई उसको मदद करने के लिए तैयार नहीं। फिर एक दिन क्या किया, वो कहीं से बंदूक बटोर लिया, लेकर के जाकर के ताऊ के सिर में मार के मार दिया, बागी बन गया। वो एक अच्छा इंसान था, एक समाज में एक बड़ा सुप्रतिष्ठित इंसान था, जिसको आर्मी में नाम यश कीर्ति थे, लोग उनके नाम के जय जयकार करते थे, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उसको गोल्ड मिले थे, किंतु गांव का पुलिस है उसको टर्रा दिए, उसके ताऊ उसकी मां को मार दिए। तो परिस्थितियां ही इंसान को गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, ऐसा मानना है, किंतु ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो कर्म होते हैं, मान लीजिए कि एक कद्दू की बेल जो होती है, ऐसा कद्दू होता है ना, लौकी घिया एक ऐसा कद्दू होता है, उसमें दो कद्दू होते हैं, तो एक कद्दू को अंदर से सुखा करके खोखला करे उसमें से कमंडल बनता है। तो ये कमंडल लेकर के साधु महात्मा जी गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करते हैं। एक कद्दू है जिस बेल में पैदा हुआ वो आपके लिए कमंडल बन गया है, और दूसरा कद्दू है वो मदारी अपनी बीन बन जाता है। बताओ क्या बात है, एक यात्रा कर रहा है साधु के पास, एक मदारी का बीन बज गया। एक गाय के दो बछड़े हैं, एक बछड़ा है वो मंदिर के सामने खड़ा कर देते हैं, बाबूलनाथ जी के सामने लोग घास डालते पूजा करो नंदी 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 नंदी, दूसरा है वो कोलू का बैल बन जाता है। एक आश्चर्य है, कुमार दो घड़े बनाता है, एक घड़े में छेद करके शिव जी के ऊपर रख दिया, चिक 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 पानी गिरता है, और दूसरे में थोड़ा दो जला हुआ ये मिट्टी का वो गोबर का डाल करके स्मशान लेकर के जाते हैं। तो परिस्थितियां नहीं करती है हमारी अवस्था ऐसी, हमारा मन जो है वो स्वस्थ, बोलिए मेरे साथ में स्वस्थ, 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 स्व माने आत्मा, आत्मा में रहने को कहते हैं स्वस्थ। जिसको बुखार नहीं है, जिसको सिर दर्द नहीं है, जिसको कमर दर्द नहीं है, वो स्वस्थ नहीं होता है, वो निरोगी कहलाता है। स्वस्थ का अर्थ होता है कि स्वेतिष्ठति, वो आत्मा में जो रहता है, अनात्मा में नहीं रहता है। आत्मा में आनंद है, आत्मा में चैतन्य है, आत्मा में योग है, आत्मा में उत्क्रांति है, आत्मा में ज्ञान है, प्रकाश है, विकास है। अनात्मा में अज्ञान है, अनात्मा में अंधकार है, अनात्मा में दुख है, यातना है, क्लेश है। तो जो आत्मा में मन रहता है वही एक आनंद की स्थिति होती है। मन जब बाहर जाएगा तब इच्छा करता है, क्या कहा, एंची लड़ा खाऊंगा, कुछ क्या भेलपूड़ी खाऊंगा, तो ये मन ने कुछ खाया, कुछ पिया, कुछ देखा, मजा आ गया। तो मजा किस में आया, मजा क्या इंची लाडा में था क्या, भेलपूड़ी में था क्या, वो डोसा इडली में था क्या,
वो किस में नहीं है, पाव भाजी में नहीं है, वो कुछ खा लिया उसके बाद में दूसरी इच्छा प्रकट नहीं हुई, एक इच्छा की पूर्ति हुई दूसरी इच्छा पैदा नहीं हुई, इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है उसको बोलते हैं शांति, उसको बोलते हैं आनंद, उसको बोलते हैं सुख। सुख वो वासना की तृप्ति में नहीं है, सुख जो है वो जब वासना की तृप्ति के बाद में मन खाली हो गया, उसको बोलते हैं लल। तो जो लल है दैट इज एक्चुअली ए पीस। तो भगवान कहते हैं कि आज तक पृथ्वी पर एक भी आदमी ऐसे नहीं हुआ कि जिसने कहा हो कि मैं बुरा आदमी हूं, बस वो यही कहेगा आदमी तो मैं अच्छा हूं लेकिन दुर्भाग्य है परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया है, जैसे कि शीशे के ऊपर में भाप, शीशे के ऊपर में धूल, परिस्थिति है उसको परिस्थिति निकाल दो। परिस्थिति भेद कम डालती है, इच्छाएं भेद ज्यादा उत्पन्न करती है। इच्छाएं अगर मजबूत हो तो एक इच्छा पूरी होती है, थोड़ा सा बुरा भी करना हो तो इच्छा की गहरी पकड़ बुरा करने को भी राजी हो जाती है, बड़ा मुश्किल काम है। बुरे से बुरे आदमी तक की भी यही शैली है, वो समझता है कि जो मैं करता हूं उसमें क्या फर्क हुआ भाई, एक मकान बना लेना चाहता हूं। देखिए ये हमने ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना, अधिकांश तो पूरी रिजर्वेशन के साथ में, कभी कभी ऐसा मौका आ जाए, कोई बहुत जरूरी बात थी, हमने अपने आर्किटेक्ट को लेकर के जयपुर जाना था, तो आकस्मिक हमने कहा चलो चल पड़ते हैं वहां टिकट मिल जाएगा, तो वो टिकट चेकर है उन्होंने कहा कि 200-200 रुपया देना पड़ेगा सेकंड एसी स्लीपर में, मुझसे नहीं कहा, वो साथ में बंदे से कहा, तो उसने मेरे को बताया भी नहीं। तो हम जयपुर गए, दिन भर रहे, रात में वापस लौटे, वो जो ट्रेन दिल्ली गई थी वही ट्रेन वापस आ रही है, अब बोल रहे हैं कि सेकंड एसी में जगह नहीं है, फर्स्ट एसी में आप ले लो। चलो ठीक है भाई दो। अब सवेरे उसने 200-200 रुपये लिए थे, अभी रात में 250-250 रुपये ले रहा है, तो मैंने उनको बोला, उसको कहा आओ भाई बैठो बैठो, आपको सरकार तनख्वाह देती है ना, देती है, सवेरे आपने 400 रुपये हमसे लिया, अभी आप 500 रुपया ले रहे हो, ये मतलब क्या है, क्यों करते हो ऐसा, इतनी सारी जगह खाली पड़ी है, सुबह तुम आप 2-5 हजार रुपया बटोर के लेके जाओगे, रोज ऐसे काम करते हो, तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है मानो कि तनख्वाह होगी 30 हजार रुपया, तो 60 हजार रुपया तुम हर महीने और बटोर लेते हो, क्यों करते हो। बोले महात्मा जी देखिए आपने पूछा है इतने प्यार से, तो मैं सही बात बताऊं, ये जो हमारी बीबियां है ना, तो उनको गहने चाहिए, उनको कपड़े चाहिए, उनको श्रृंगार चाहिए, और बच्चे हैं उनको नई स्कूल में जाना है, बच्चे को साइकिल से गुजरा नहीं चलता है, स्कूटर चाहिए, जावा चाहिए, हीरो होंडा चाहिए, तो ये सब कहां से मिलाओ, वो 30 हजार में बनता नहीं है। अभी अपने आप को आप सोचो कि पुरानी दादी को पूछो पहले कैसे नहाती थी, मुल्तानी मिट्टी से नहाती थी, अरीठा से नहाती थी, बेसन से नहाती थी, पर साबुन आ गया तब तक ठीक था, अभी शैम्पू आ गया है, शैम्पू की इतनी बड़ी बोतल होती है, आधी तो खाली होती है हवा से भरी, आधे में ही माल होता है उसका, सुंदर जो पैकेट है उसी का पैसा आपसे ले लेता है। अभी ये शैम्पू से नहाना है, अभी आपका चेहरे में कितना तरह का मेकअप करना चाहिए है, कोई लोग मुझको भी बोलते हैं समझी ये आपका थोड़ा ये थोड़ा बढ़ गया उसको निकाल दें क्या, मैंने बोला यार क्या बात है क्यों निकालना है, रहने दे तेरे को क्या तकलीफ होती है। कोई कोई लोग मेरे को बोलते हैं सूरत में जिसके यहां रुके थे उनके बेटा ने कहा स्वामी जी मैं ब्यूटी पार्लर खोल रही हूं, ये पहला ही है, एक साथ में हर हफ्ते में एक एक खोलूंगी, आप 20 दिन रहने वाले तो 3-4 सभी आपके हाथ से उद्घाटन करेंगे। मैंने कहा मुझे बात बता तेरे ब्यूटी पार्लर में उद्घाटन मैं करूंगा, कितनी चेयर्स हैं, बोले बहुत हैं 10 चेयर हैं, सब कुछ बहुत है हमारे पास में, मेरा क्या लाभ होगा। तो बोले मैं आपको क्या करूं, तू बता ना तू क्या करके देगी बिटिया। तो बोले मैं आपकी विग बना दूं, अरे मेरे प्यारे भाई तो पहले ही सफा रखता हूं तू विग क्यों बनाएगी, बोला चल मेरा पेडिक्योर कर दे, बड़ा खुश हो गई, पांव में मुल्तानी मिट्टी लगा करके नाखून को रगड़ रगड़ के साफ किया। तो ये जो तमाम जो होता है ये हमारी इच्छाओं से होता है, इच्छाएं इच्छा बड़ी अभागणी है, आशा नाम नरस्य रूपम अधिकम, ये इच्छा है ना ये वो एक ऐसी रस्सी के मापक जाल के मापक है, जितना निकलने की कोशिश करो उतना फंसते चले जाओ। ये देखो जंजीर तो जंजीर होती है, तुम लोहे की जंजीर से बंधो कि सोने की जंजीर से बंधो, मेरे प्यारे बंधन तो बंधन ही होता है। तो ये क्या कहते हैं कृष्ण, कहते हैं कि भाई जो हमारे जीवन में अगर इच्छाओं को कोई छोड़ दे, क्या बोले मेरे को कोई इच्छा नहीं तो मैं उसे सन्यासी कहूंगा। ये बड़ी गहन व्याख्या है, इसको कैसे समझा जाए। साधारणतः सन्यासी और गृहस्थ का फर्क क्या है, गृहस्थ शहर में रहता है, उनके अपने घर हैं और पति है पत्नी है बच्चे हैं सब है, और महात्मा है वो घर के गांव के बाहर के आश्रम बना के रहता है। मगर जो गृहस्थी घर में रहता है अगर वो भी इच्छा ना करे किसी तरह की, वो सन्यासी है। मगर जो सन्यासी आश्रम में रहकर इच्छा बटोरता रहे तो गृहस्थी है। बाहर का तिलक, बाहर की मालाएं, बाहर की छाप, बाहर की वेशभूषा से ना आप सन्यासी बनते हो ना आप गृहस्थ बनते हो। गृहस्थ कौन है कि जिसको इच्छा है, गृहस्थ गृहे तिष्ठति घर में रहता है, कौन से घर में, इच्छाओं के घर में रहता है वो, कि भाई हमने इस बार पर्दे करा लिए, इस बार डिस्टेम्पर कराएंगे, प्लास्टिक कोट कराएंगे, ये टीवी पुराना बिक्री कर देंगे नया ले लेंगे, दिवाली में तो लेना ही है हमने, तो ये थोड़ा कमरा है उसको थोड़ा ब्रॉड करा लेते हैं, और जो हमारा बाथरूम था उसकी टाइल्स टूटी थी उसमें थोड़ा बढ़िया से लगा लेते हैं कुछ नया। तो ये इच्छाएं ग्रस्त करते रहते हैं तो नथिंग रॉन्ग इन दैट, क्योंकि उनका अपना घर है वो सुविधा चाहते हैं। और सन्यासी लोग भी BMW चाहते हैं, सन्यासी लोग को भी अभी आपको मर्सिडीज चाहिए। मुझे किसी ने कहा समझिए आप आएंगे तो आपको कौन सी कार में आप चलना पसंद करेंगे, मैंने कहा जो चार पहिए से चलती है और एयरपोर्ट से मुझे मेरे प्रवचन करने के स्थान में पहुंचा देगी, कोई भी कार चलेगी यार। नहीं नहीं आपको ऐसा कोई खास नहीं है, बेंच नहीं चाहिए। मैंने बोला बेंच तो मुझे पता है, जिसमें हम स्कूल में बैठते थे ये बेंच क्या होती है, हाँ यू डोंट नो बेंज, मुझे पता रहा, मैं क्यों बोल रहा हूं उसको। ये सन्यासी लोगों का भी एक मैं क्या बताऊं, ये इतना ठाठ, एक को चार चेले चाहिए, एक को दस चेला चाहिए, एक इससे क्या होता है, ये इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाना है, होर्डिंग वॉर कर दिया। वो महात्मा जी के 12 होर्डिंग लगे मेरा 16 लगना चाहिए, उनके कितने माइक लगे हैं, उनके माइक लगे हैं 16, अपने 20 लगाओ। तो ये सन्यास नहीं होता है, गृहस्थियों से भी खराब हो गए। पैसा किसकी जेब से आता है, आप ही की जेब से तो आता है। तो कृष्ण बहुत सावधान करते हैं, कृष्ण करते नहीं ऐसे जीवन को मत जियो, ये जीवन है काम कोह मद मानन मोह लोभन क्षोभन रागन द्रोहा जिनके दंभ कपट नहीं माया तेन के हृदय बसं रघुराय। काम कोह मद मानन मोहा लोभ, सरल से सरल। मधु बाबू हम उसको बार बार बोलते रहते हैं, स्वामी जी आप बहुत सरल हैं, आप बहुत सरल हैं, आप बहुत सरल हैं। हमारे ट्रस्टी भी अहमदाबाद में वकील है, स्वामी जी तमें बहु भोला छो, तमें बहु भोला छो। अरे भोड़ो हो तो भोड़ा नाचने वालो थाय, कपटी हो तो नहीं थाय मेरे प्यारे। अरे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने खुद कहा मोहे छल छिद्र न बावा, जो छल करता है कपट सरल बन के रहा। हमारी मीराबाई हमसे कहिए जहां बैठा वो तिथि ही बैठू, जो देवे सुई खाऊं बैठो गिरधर के घर जाऊं। हमारे कबीर कहते मैं गुलाम तेरा, तू साहेब मेरा, एक रोटी दे लंगोटी तेरे द्वार पाऊं, काम क्रोध छोड़ चले हरि गुण गाऊं। अरे जीवन की आवश्यकता है, एक टुकड़ा रोटी चाहिए, कहा है भाई मैं क्या करूं, बहुत जरूरी बात है। तो कृष्ण है इतनी बात करने के बाद में एक बार और कहते हैं जो आज कह देना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि जो अग्नि को जो छोड़ देता है वो सन्यासी है, क्योंकि अग्नि, कृष्ण ने जब ये हमारे बात कही थी, ये मंत्र का उच्चारण कहा था, तो 5000 साल बीत गए। उन दिनों में अग्नि सर्वस्व हुआ करती थी, अग्नि के बिना गुजारा नहीं होता था, अग्नि से खाना पकता था। रात में पशुओं से बचने के लिए चारों ओर अग्नि जला करके बीच में लोग सोते थे, तो अग्नि ही सर्वत्र थी। अब उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में वर्तमान परिस्थिति में क्या कहा जाए, कौन सन्यासी, अग्नि को छोड़ने वाला सन्यासी? नहीं 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 नहीं, जो यंत्र को छोड़ दे उसको सन्यासी। कल मधुबाबू से कह रहे थे, बताओ भाई आप यंत्र को छोड़ सकते हो क्या? सबसे पहले आपकी क्या आवश्यकता है, वो बेडरूम की स्विच दबा करके देखना कितना बज गया। अच्छा, दूसरी बात, उसके पहले उठने का अलार्म बज गया उसको बंद करो, वो तो यंत्र है। बेडरूम की स्विच भी यंत्र है, टूथपेस्ट यंत्र से आती है, ब्रश यंत्र से आता है, टंग क्लीनर यंत्र से बनता है, साबुन यंत्र से बनता है, फुहारे में शावर में पानी यंत्र से आता है, अरे जो कपड़ा पहन रहे हो बाबा, कॉफीन भी पहनो वो भी यंत्र से ही बनता है, जो ब्रेड खाते हो सवेरे यंत्र से बनता है। बिना यंत्र के जीवन की कल्पना करके तो देखो, जीरो हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। क्या करना, फिर गुफा में जाकर के बसना, बहुत मुश्किल है, सोच नहीं पाएंगे। बिना यंत्र के जो जीवन यापन करेगा वही सन्यासी है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब बिना यंत्र के जो जीवन यापन करेगा तो ऐसा सन्यासी हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। अगर सन्यासी को चंदन भी लगाना है तो चंदन जिस मैसूर के पेड़ से कट के आया वो भी यंत्र से ही काटा गया था। जो भस्म लगाता है वो भस्म है वो भी लकड़ी जला करके पीसी गई, वो भी यंत्र से आती है। तुम जो एक रोटी खा लेते हो उसके पीछे पुत्री पूरी पूरी दुनिया लगी हुई है, किस खेत में वो गेहूं पैदा हुआ था, बाजरी पैदा हुई थी, मक्की पैदा हुई, तो यंत्र से ही वो तो उसको हल चलाया गया था, तो वो ट्रैक्टर चलाया गया था, उसको थ्रेशिंग किया गया वो भी यंत्र से हुआ था, उसको पीसा गया उसको यंत्र से किया गया था, गैस में जहां पकाए वो भी यंत्र है। तो फिर ये आजकल तो रोटी पकने के लिए भी मशीन बन गई है। तो ये हमारे आदरणीय श्री डालमिया जी महाराज बोल रहे थे कि चूरमा को चूरी करने के लिए भी यंत्र लगे हुए, तो फिर तुम जो चूरमा खाना चाहते हो मेरे प्यारे, तो बिना यंत्र के गुजारा कैसे होगा? सारी सृष्टि आज यंत्र पर निर्भर है। कोई कह दे कि मैं बिना यंत्र के जीवन जीऊंगा तो असंभव है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं बिना यंत्र के जीवन जीने वाला योगी नहीं है, बिना अग्नि के जीवन जीने वाला सन्यासी नहीं है। कौन है सन्यासी, कौन है योगी? सन्यासी वही है, योगी वही है जिसने अपने मन में इच्छाओं का त्याग कर दिया, ऐसा सन्यास शाश्वत रहेगा। यंत्र वाला सन्यास नहीं रहेगा। सन्यास शाश्वत कौन सा रहेगा? जिसने कहा, तो परमात्मा ने इतने बड़े विराट जगत में तो हमारे लिए क्या किया है कि आदमी की अगर इच्छाएं गिर जाएं, तो जीवन की पूरी ऊर्जा शुभ में प्रकट हो जाएगी। अब बात बता, एक दो बात है। एक तो बंदा क्या करता है, कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म अपने आप गिर जाएंगे, जो करने योग्य है वही करोगे, जो करने योग्य नहीं है वो आप छोड़ दोगे। बहुत जरूरी बात। दूसरा श्लोक है, थोड़ा उसको भी पढ़ लिया जाए। आइए पढ़िए, दूसरा श्लोक है, उसमें क्या कहा है, इसी बात को आगे हमें समझाने की कोशिश भगवान करते हैं। यम सन्यासमिति प्राहु, यम सन्यासमिति प्राहु, तम विद्ध योगम तम विद्धि पांडव, योगम तम विद्धि नय सन्यस्त संकल्प, ये सन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। योगी, देखिए आप बहुत सालों से गीता पढ़ते हैं तो थोड़ा यहां नय सन्यस्त संकल्पो जो लिखा है वह वस्तुतः संधि विच्छेद करने पर संकल्प ही होगा, वो विसर्ग का लोप होने पर ये योगो हो गया है। वैसे उसको पढ़ने के समय यानी संकल्पो है, उसको संकल्प ही पढ़ना चाहिए। नय सन्यस्त संकल्प, नय सन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन, योगी भवति। इसलिए अर्जुन जिसको सन्यास, यम सन्यासम इति प्राहु, यम जिसको सन्यासम सन्यास इति ऐसे प्राहु कहा जाता है, योगम वही योग है, जो सन्यासी वही योग है। तम विद्धि ऐसे जानो पांडव, हे अर्जुन जो संन्यास कहा वो ही योग है। नया संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन, क्योंकि संकल्पों को अगर त्याग नहीं किया तो वो योगी नहीं है। अब दो हमारे पास में समीकरण है, एक इच्छा है दूसरा संकल्प है, एक सन्यासी है एक योगी है। अब जो कह दिया कि जो सन्यासी है वही योगी है, तो जो इच्छाओं को त्याग करता है वही संकल्प को त्याग करता है। ये संकल्प हमारे मन में आते क्यों है? अरे संकल्प तो मन का स्वभाव है, मन है वो संकल्प ना करे तो मन ही नहीं है। जैसे कि एक वृक्ष है उस पर चिड़ियाएं परिंदे आकर के बैठते हैं, वो चिड़ियाएं जो आकर के बैठती हैं कब आएगी उसका कोई नियम नहीं है, कब उड़ जाएगी उसका भी कोई नियम नहीं है। तो इसी तरह से मन में भी संकल्पों के आने और जाने का कोई भी नियम नहीं है। कभी भी संकल्प, किस समय कौन सा संकल्प, अब क्या बोलते हैं, शांति तु समुद्र कल्लोले स्नातुम इच्छति दुर्मति। हमारे तो आश्रम के पास में ही प्रेमपुरी आश्रम से एक पत्थर दूर इतना ही समुद्र है, चले जाओ किनारे खड़े हो जाओ, फिर कहो ये समुद्र में जो लहरें आ रही हैं ये लहरें आना बंद हो जाएगी तब जाकर के मैं उसमें डुबकी लगाऊंगा मेरे प्यारे। तो समुद्र में तो कभी डुबकी लगेगी ही नहीं, क्यों नहीं, ये समुद्र का स्वभाव ही लहर है, लहर ना हो तो समुद्र कैसे हो सकती है। तो संकल्प विकल्प ना हो तो मन कैसे हो सकता है, हो सकता है। मन ही हो मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्ष हो, क्यों कहा है, मन ही हमारे सुख और दुख का कारण है। तो भगवान ने क्या कहा, मई एव मन आधस्व मई बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मई एव अत ऊर्ध्वम न संशय। अगर आप अपना उद्धार चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, अपनी उत्क्रांति चाहते हो तो तुम्हारा मन मुझे दो। हम भगवान को रेशमी कपड़े देते हैं, टोकरी भर के फल फूल दे देते हैं, 1000-1200 रुपया चढ़ा देते, कभी हमने सोचा कभी हम अपना मन चढ़ाए? ये शिवरात्रि अभी अभी गई, कन्नन नाम का एक भक्त दक्षिण भारत में हुआ था, वो शिकारी था, जंगल में रहने वाला था। उस कन्नन ने देखा कि शिव मंदिर में लोग जाते, एक दिन मैं भी जाऊं, खिड़की से गवाक्ष से देखता रहा लोग क्या करते हैं, लोग जल चढ़ाते हैं, लोग फूल चढ़ाते हैं, कुछ नैवेद्य करते हैं, मेरे पास तो कोई बर्तन नहीं मैं क्या करूं। तो उसने कुछ फूल तोड़े अपनी जटा में बांध लिए, दो खरगोश पड़े उसको हाथ में पकड़ लिए, मुंह में पानी भर लिया, देखा कोई नहीं है तो शिवजी के मंदिर में जाकर के मुंह से पानी डाल दिया, फिर वो सिर वाला फूल चढ़ा दिया दोनों खरगोश के लिए। फिर देखा उसने, मैं बाहर से देखता था पता चलता नहीं था, तुम्हारी आंख तो है नहीं तो बिना आंख के तुम्हारा क्या होगा, अच्छा रुको रुको मेरी तो दो है ना मैं एक देता हूं। फिर जंगल गया कुछ गोंद लाया लगा दिया, तीर से अपनी एक आंख लगा दी उनको भगवान को, अरे एक आंख में क्या होता है कितना बेहूदा लग रहा है, दूसरी आंख में निकाल दूं तो चिपकाऊंगा कैसे देखूंगा कैसे। तो क्या किया, दोनों पांव शिवजी के लिंग के ऊपर रख दिए, पिंडी के ऊपर रख दिए, दोनों पांव बैठ गया ऊपर, फिर नाप किया गोंद लगाया आकर लगा दिया दोनों आंख, अब शिव प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए वस्तुतः शरीर तो इनके सिर में बैठा हुआ था, कहने की आवश्यकता नहीं, दोनों आंखें थी। शिवजी ने कहा रावण के 10 मस्तक थे, वो मेरे को एक एक मस्तक चढ़ाता था, एक बार विष्णु ने 1000 कमल चढ़ाने की सोची, 999 चढ़ाई, एक मैंने गुम कर दिया था, तो उसने फिर एक नेत्र कमल चढ़ाया, पर मेरे ऊपर पूरे के पूरा इंसान कभी कोई नहीं चढ़ा। उसको बोलते हैं टोटल समर्पण, संपूर्ण शरणागति। हम शिवजी को कितना जल चढ़ाए, कभी हमने मन चढ़ाया क्या, पूछो अपने आप को मन चढ़ाया क्या, शिवजी को दूध चढ़ाओ दही चढ़ाओ बेलपत्र चढ़ाओ मन चढ़ाया क्या, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कल तो हाईकोर्ट ने एक नया तुक निकाला है, टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर लिखा है, शिव हनुमान और दुर्गा ये तीनों हिंदू देव है ही नहीं। ये एक तो परा तत्व है, इनको देव नहीं गिनना चाहिए। इनके मंदिरों में जो चढ़ावा आएगा इन पर पूरा टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स। अब देखो क्या है, बोलता भी दीवाना है सुनता भी दीवाना। बोले ये कोई हिंदू देवी देवता ही नहीं है, इनका हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, शिव का भी नहीं, हनुमान का भी नहीं, देवी का नहीं। ये संसार ऐसा ही है, जब तक हम अपने आप को संपूर्णतः समर्पित नहीं करते तब तक इच्छाएं बनी रहेंगी, तब तक संकल्प बने रहेंगे। और इच्छाएं अगर ना हो तो तुम सन्यासी हो, संकल्प नहीं हो तो तुम योगी हो। जो सन्यासी है वही योगी है, ये कृष्ण कहना चाहते हैं। आगे कल प्रातःकाल में मिलेंगे। ओम नमो नारायण।